नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल संसार की आशा भरी नजरे हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा नजरे हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके से मिलाना है। एक आग हर दिल में। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल के अध्ययन पुस्तिका में से नए नियम की पुस्तक उसके दूसरे कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि हमारी यह देह जो नाशवान देह है, जिस देह में हम रहते हैं, यहाँ से नाश होगी और एक दिन जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके न्याय आसन के सामने उपस्थित होंगे। उनके पापों के न्याय के लिए नहीं, परंतु जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है अपने जीवन के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए, कि आप जो कुछ भी काम किए हैं उसके अनुसार से आपको प्रतिफल मिले। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रभु का भय हमें मनुष्य को, अर्थात हम मनुष्यों को विश्वास दिलाने की प्रेरणा देता है। तो इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे उन तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके जीवित वचन को सुनने के लिए रेडियो के सामने बैठे हैं। हमारी प्रार्थना है पिताजी, जब हम फिर एक बार आपके वचन में से सीखते हैं, आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज जो कुछ भी हम अध्ययन करते हैं हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। आप मुझसे बातचीत कीजिए, मुझे सिखाइए, हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को सिखाइए, ताकि हम इस बात को और अधिकाई से जान सकें कि आपने हमें रचा है, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारे प्रत्येक समस्याओं से छुटकारा देना चाहते हैं। जो भाई बहन निराश हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, कठिन अवस्था में हैं, आप उन सब की सुधि लीजिए। आज के अध्ययन पर विशेष अपने आशीष प्रदान कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिताजी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आप मेरे साथ निकालिए दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसका 11 पद, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसका 11 पद, जहां से आज हम अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। प्रभु का भय मानने के बारे में बाइबल बहुत चर्चा करती है। नीति वचन की पुस्तक 9 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। जी हाँ, मुक्त विचार की एक धारणा यह है कि हमें परमेश्वर से भयभीत नहीं होना चाहिए। वे परमेश्वर को एक मधुर स्वभाव का, अर्थात बुराई को अनदेखा करने वाला कहते हैं, जिसके साथ आप अपनी निरंकुश इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। मुक्त विचार का परमेश्वर के वैश्विक पिता होने और मनुष्य का वैश्विक भाई होने की शिक्षा देते हैं। यह सबसे अधिक घृणित शिक्षा है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 31 पद में, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, हम मनुष्य को नकली रोटी न दें। जी हाँ, हम आंसू बहाने वाला या आनंद विभोर करने वाला सुसमाचार न सुनाएं। हमारा परमेश्वर पवित्र एवं धर्मी परमेश्वर है। यही पवित्र परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यही है वह पवित्र परमेश्वर जो आपका उद्धार करना चाहता है। परंतु मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके पास नहीं आते, तो न्याय के लिए तो आपको उसके पास आना ही होगा। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिए, अनेक मंच आज नरक के संदेश से वंचित हैं। दंड और न्याय पर भी बहुत कम संदेश दिया जाता है। इसका परिणाम यह है कि परमेश्वर का न्याय आज भुलाया जा चुका है। प्रभु यीशु ने कहा था कि वह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मेरे मित्रों, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हमें परमेश्वर के दंड से डरना आवश्यक है। हमें स्मरण रखना है कि हमें उसे लेखा देना होगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, लेखा देना होगा। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप परमेश्वर की पूर्ण इच्छा का प्रकाशन करते हैं तो प्रेम पूर्वक करें, गर्जन और बिजली की चमक सा वातावरण न बनाए। हमें यह समझना और स्पष्ट करना है कि मनुष्य भटक चुका है। यदि हम कहें कि हम अपनी प्रशंसा नहीं करते, अर्थात ख्याति नहीं चाहते, मैं आज की मीठी मीठी बातों से बहुत डरता हूं। आज मनोविज्ञान का बोलबाला है, कैसे एक स्वीकार्य व्यक्ति बने। जी हाँ, क्या मैं कह सकता हूं कि मसीह से रहित आपको मनोविज्ञान की आवश्यकता नहीं? आप नरक जाने वाले पापी हैं। जब पाप के मार्ग पर हैं, आपको यदि कोई आवश्यकता है तो वह मसीह है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार एक ड्राइवर बस लेकर के जा रहा था और उसमें एक शराबी बैठ गया और उसके बगल में एक प्रचारक महोदय बैठ गए और बार बार वह कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था जिसने शराब पी रखी थी। तब उस प्रचारक साहब ने कहा, भाई साहब आप जानते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि आप नरक जा रहे हैं। तो शराबी ने तुरंत ड्राइवर से कहा, भाई साहब आप गाड़ी रोकिए, मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, और वह उतर गया। मेरे मित्रों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि वह तो उतर गया परंतु जो बैठे थे उनके हिसाब से कि वे सब नरक जा रहे थे। मित्रों मेरी बातें मुझे आप में प्रिय नहीं बनाएगी परंतु यह परमेश्वर का वचन है। हम स्वयं को आपको नहीं सौंपते हैं, हम नहीं चाहते कि आप हम में गर्व करें। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर की भली और भावती इच्छा प्रकट करें। वचन के प्रचार के पीछे हमारी प्रेरणा उसका न्याय है। यही एक बात है जो कलीसिया के सोए हुए और सदस्यों को जगाएगी। एक प्रचारक जो बाहर जाकर परमेश्वर के वचनों का उल्लेख करते हैं, परंतु आवश्यकता हमारे देश में भी है, हमारे लोगों के लिए भी है। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 5:13 में लिखा है, यदि हम वे शुद्ध हैं तो परमेश्वर के लिए और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं। पौलुस कहता है कि लोग सोचेंगे वह पागल है, कोई बात नहीं, वह परमेश्वर के लिए ऐसा कर रहा है। यदि कोई सोचे कि उसका मानसिक संतुलन ठीक है तो वह उनके लिए हित के लिए ही होगा। जी हाँ, तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, मसीह का प्रेम हमें बाध्य करता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:14-15 में लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिएं परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हमें विवश करता है। यह एक ऐसी उक्ति है जिसे प्रायः गलत समझा गया है कि मसीह का प्रेम हम पर रोक लगाता है। पौलुस के कहने का अर्थ यह नहीं है। वह कहता है कि मसीह का प्रेम हमें बाध्य करता है कि बाहर जाएं। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। मसीह का प्रेम हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए प्रेरित करता है। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि उस प्रेम को हम दूसरों के साथ में बांटे, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। यही था जिसके कारण पौलुस पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार सुनाने के लिए निकल पड़ा। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। मनुष्य मृत्यु दंड के अधीन है। अदन की वाटिका में आदम पुरानी सृष्टि का सिर था। पुरानी सृष्टि आदम में न्याय के अधीन थी। परमेश्वर ने उससे कहा था उत्पत्ति की पुस्तक 2:16-17 में, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परंतु आदम ने आज्ञा नहीं मानी। आदम ने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। वह मृत्यु दंड का भागी हो गया और संपूर्ण मानव जाति को ले डूबा, क्योंकि वह उनका प्रतिनिधि था। आपका और मेरा जन्म मरणहार परिवार में हुआ है। संपूर्ण मानव जाति अब मृत्यु दंड की भागी है। मेरे मित्रों आज नहीं तो कल हम में से प्रत्येक को मरना है। किसी ने कहा, जिस पल आपको जीवन दिया जाता है उसी पल वह जान लेना आरंभ कर देता है। क्या है भजन संहिता 23:4 में दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से अर्थात घाटी से होकर चलूं, तो उसके कहने का अर्थ था कि संपूर्ण जीवन ही अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलना है जो अधिकाधिक अंधेरी और सक्रिय होती जाती है, जब तक कि हम अंत में मृत्यु के द्वार से ना निकल जाएं। डॉक्टर आयरन साइड इसका बड़ा ही असामान्य उदाहरण देते थे। मैं इसे अपने शब्द में व्यक्त करता हूँ। हम कल्पना करें कि हमारे नगर में सबसे सुंदर बगीचे में परमेश्वर ने आदम को रखा। वहाँ आदम के लिए सब कुछ था, परंतु परमेश्वर ने उसे एक काम के लिए मना किया था। आदम पाप रहित था, अब उसके पास चुनाव करने का अवसर था। परमेश्वर ने उसे एक ही बात के लिए मना किया था और आदम ने वही किया। हम इसे आदम का पतन कहते हैं। वह पहाड़ पर से लुढ़कता हुआ आया और घाटी में गिर गया, जहां आज हम हैं। अब उस घाटी में उसने संतानोत्पत्ति की, वे अब वहां नहीं है जहां आदम पाप से पूर्ण था, वे उस घाटी में हैं जहां आदम गिर गया था। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से संसार में आया। वह पूर्णतः निष्पाप था, वह पवित्र था, दोष रहित था, शुद्ध था और पापियों से पृथक था। वह पापियों को बचाने के लिए जगत में आया था। वह स्वर्ग से तो आया था, परंतु पर्वत के ऊपर नहीं गया, क्योंकि पवित्रता के उस स्तर पर कोई मनुष्य नहीं था। सब के सब घाटी में थे, सब पाप और अपराध में मरे हुए थे। तो उसने क्या किया? वह घाटी में आया, मृत्यु के स्थान में आया, सब के सब वहीं थे और वह सब के लिए मरा, क्योंकि मनुष्य मरा हुआ था। वह मृत्यु में गया और अब वह विश्वासियों को अपने साथ जीवन के पुनरुत्थान में ले आता है। क्या वह उन्हें उस ऊंचे स्थान पर ले जाता है जहां आदम पाप से पूर्व था? नहीं, वह उन्हें स्वर्ग में ले जाता है। हम जो मसीह में विश्वास करते हैं स्वर्गीय स्थान में हैं। इफिसियों के पत्री 2:6 में पौलुस कहता है, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जी हाँ, जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। उसने हमारा स्थान ले लिया, मेरा स्थान, आपका स्थान ले लिया, और वे जो उसमें विश्वास रखते हैं उसके साथ जी उठते हैं। वे इसलिए जी नहीं उठे कि पहाड़ के ऊपर रखे जाएं कि फिर नीचे गिरें। वह उन्हें स्वर्गीय स्थान में ले जाता है। मसीह ने हमारा स्थान ले लिया है। अब यदि हम जीवित हैं तो उसमें विश्वास के द्वारा जीवित हैं कि जो विश्वास में जीवित हैं आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मसीह केवल इसीलिए नहीं मरा कि हम दंड और मृत्यु से बचाए जाएं, परंतु इसलिए कि हम अपने मरण अवस्था से नए जीवन में लाए जाएं। अब हमारा जीवन उसे समर्पित होना चाहिए कि अब से आगे हम परमेश्वर की महिमा के निमित्त जीवन बिताएंगे या जीवन जिएंगे। परमेश्वर की संतान के लिए इस समझ से मानवीय परिवार का संपूर्ण नया अर्थ बन जाता है। हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5:16 में पढ़ते हैं, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। ध्यान दीजिए, हम शरीर के अनुसार मनुष्यों को नहीं जानते हैं, अब हम मनुष्यों को अलग दृष्टि से देखते हैं, पहले जैसी सांसारिक दृष्टि से नहीं। संसार में केवल खोए हुए मनुष्य हैं। मैं एक अति बुद्धिमान प्रोफेसर को जानता हूं जो खोया हुआ है, क्योंकि वह मसीह को नहीं जानता है। मैं एक कमजोर मनुष्य को जानता हूं जो खोया हुआ है, क्योंकि वह मसीह को नहीं जानता है। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, अर्थात हम मनुष्यों को उनकी जाति की पृष्ठभूमि के अनुसार, सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार या त्वचा के रंग के अनुसार नहीं जानते हैं। जी हाँ, हम जानते हैं कि पुराने स्वभाव के कारण वे सब पाप में खोए हुए हैं, परंतु मसीह सब के लिए मरा है, उनके लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए। मसीह एक बुद्धिजीवी के लिए या कमजोर वर्ग के लिए या शिक्षित लोगों के लिए या धनवान लोगों के लिए या गरीबों के लिए नहीं, वह सब के लिए मरा है, आपके लिए और मेरे लिए भी। याकूब अपनी पत्री के 2 में कहता है कि धनवान मनुष्य को जो अंगूठी पहने बहुमूल्य वस्त्रों में आता है उसे सम्मान का स्थान देना और एक गरीब को कहना कि उसके पांव के पास बैठ जा उचित नहीं है। यह क्यों उचित नहीं है? क्योंकि परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें मानव जाति को पापी के रूप में देखना है, जिनके लिए मसीह यीशु मरा। यहाँ तक कि यहूदियों और अन्य जातियों का अंतर भी अब नहीं रहा। संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की दृष्टि में पापी है। सबके लिए एक ही समाधान है, मसीह यीशु का सुसमाचार। जी हाँ, हम किसी भी मनुष्य को शरीर के अनुसार नहीं देखते हैं, सब एक ही स्तर पर हैं और सब पापी हैं। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। मैं मानता हूँ कि पौलुस मसीह को शरीर के अनुसार जानता था। मेरे विचार में वह उसके क्रूसीकरण पर उपस्थित था। मैं कभी विश्वास ही नहीं कर सकता कि वह जोशीला फरीसी यरूशलेम में मसीह के क्रूसीकरण पर उपस्थित ना रहा हो। 2000 वर्ष पूर्व यीशु इस पृथ्वी पर चलता था। उसका जन्म बेतलहम में हुआ और वह नासरत में बड़ा हुआ तथा गलील में घूमता फिरता था। उसने गलील के काना में अपनी सेवा आरंभ की और अंत में यरूशलेम को गया, जहां क्रूस पर मर गया और नगर के बाहर यूसुफ की कब्र में दफन किया गया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और अपनों को दर्शन दिया। इसके पश्चात स्वर्ग में चला गया। अब हम उसे गलील के पुरुष के रूप में नहीं जानते हैं। आज गलील का पुरुष वह नहीं है। जी हाँ, बड़े दिन के समय अर्थात क्रिसमस के समय अनेक जन बेतलहम को जाते हैं। वहां बहुत बड़ी भीड़ होती है। वे किसे देखने के लिए जाते हैं? उस शिशु को? वह तो वहां पर नहीं है। ईस्टर के समय में, प्रभु यीशु के जी उठने के समय में लोग यरूशलेम में बहुत भीड़ लगाते हैं, परंतु हमारा प्रभु तो जी उठा है। वह वहां नहीं है, उस कब्र में नहीं है। अतः आज हम उसे शरीर के रूप में नहीं जानते हैं। इस पल वह परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। वह महिमामय मसीह है। यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना है, परंतु अब हम उसे वैसा नहीं जानते हैं। हम 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले मसीह यीशु की पहचान में नहीं है। हम महिमामय मसीह की पहचान में है। इसी कारण पौलुस कहता है कि हम उसके साथ मर गए और फिर जी उठे और अब हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गिक स्थानों में हैं। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि हम मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं। अब वह गलील पुरुष नहीं, महिमा का मसीह है और हम जो उसमें विश्वास के द्वारा उसके साथ अपनी पहचान बनाते हैं, उसके साथ स्वर्गिक स्थानों में वास करते हैं। हम उसके साथ मर गए और उसके साथ जी भी उठे हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। हम इस पद को प्रायः गवाही देने वालों के मुख से सुनते हैं। वे कहते हैं कि पहले वे जो बुरे काम करते थे अब नहीं करते हैं। वे इस परिवर्तन को इस पद की पूर्ति समझते हैं। यदि आप और मैं मसीह में नई सृष्टि हैं, तो वे पुरानी बातें कौन सी हैं जो बीत गई? आपको स्मरण होगा कि हमने कहा था कि संपूर्ण मानव जाति पर्वत की घाटी में है और सब के सब पापी हैं। अब जब हमने मसीह में विश्वास किया तो वे पुराने संबंध बंधन बीत गए हैं। अब हम आदम की पहचान में नहीं हैं, हम इस संसार की पहचान में भी नहीं है। अब हम मसीह की पहचान में हैं। हमारा मसीह की देह में बपतिस्मा हुआ है और हम मसीह के हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं और सब नई हो गई है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध बन गया है। अब हम महिमा के मसीह के साथ संबंध में हैं। जी हाँ, हम व्यवहारिक बने। और आप कहेंगे, मैं जानता हूं कि यह एक अद्भुत पद है, परंतु मैं यह कैसे निश्चित जानूंगा कि मैं एक नई सृष्टि हूँ? सुनिए, मसीह यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 24 पद में क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? क्या आप उसमें विश्वास करते हैं? यदि आप उसमें विश्वास करते हैं, तो वह आपको विश्वास दिलाता है कि अनंत जीवन आपका है और आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इस प्रकार आप एक नई सृष्टि हैं। दंड और मृत्यु के अधीन आप नहीं हैं। आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अपना विश्वास अनुभव पर आधारित नहीं रखें। आप नई सृष्टि इसलिए हैं कि यीशु ने ऐसा कहा है। आधार परमेश्वर का वचन है। अब आप उस पुराने सृष्टि के नहीं जो आदम के साथ पाप में गिर गई। नई सृष्टि मसीह में अवस्थित है और उसमें विश्वास करने के द्वारा आप भी उसमें अवस्थित हैं। आप और मैं संकट और परीक्षा के स्थान में हैं। हम बार बार अनेक बार चूकते हैं, परंतु प्रभु यीशु हमें उबार लेता है। एक महान सत्य है तो यह है कि प्रभु यीशु ने हमें मुक्ति दिलाई और अब हम एक नई सृष्टि हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे और आपको इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना है कि मैं एक नई सृष्टि हूँ। इसका मतलब यह है कि मुझे उन पुराने पापमय जीवनों में नहीं चलना है, क्योंकि हम मसीह की पहचान में हैं और इसलिए मुझे और आपको मसीह के स्वभाव में बढ़ना है, उसे प्रकट करना है, क्योंकि हम उसके सदस्य हैं, उसके अंग हैं, उसके निकटता में जाने वाले हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आप में से कई जो यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किए हैं या उस पर विश्वास नहीं किए हैं, आज आपके लिए भी अवसर है कि आप भी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उस दंड से, उस नरक में जाने से बच जाएं। जी हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके पापों के लिए भी दंड भोगा है। वह आपके लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए, सारे पापों को लेकर अपने आप को उसने क्रूस पर बलिदान कर दिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज वह चाहता है कि आप बच जाएं, आप जीवन पाएं, शांति पाएं। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज एक सही निर्णय के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और इन आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। प्रभु आप सबकी बहुतायत से सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना, कल हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है।
उसे मिलाना है एक आ